Salatu wassalam wa tahiyyatu wal ikram sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi al-atyabin al-athharin la sayyima baqiyatillah fil ardin sahib al-asr wa al-zaman al-imam al-hujja الإمام المهدي هذه الأمة الأمة المحمدية ولعنة الدائم على جميع طغاة العالم من الحاضرين والغائبين والقادمين إن شاء الله إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوا على محمد. إن شاء الله صلوا على محمد وعلى محمد. پوری کائنات کے نجات دہندہ کی ولادت کی یہ رات اب قریب ہونے جا رہی ہے. شب قدر سے کم یہ اہمیت نہیں رکھتی. ثواب کے اعتبار سے, تاثیر کے اعتبار سے, روایات میں میں جو الفاظ استعمال کروں بڑے ذمہ دارانہ طریقے سے اور ناپ تول کے بیان کر رہا ہوں. ثواب کے اعتبار سے, تاثیر کے اعتبار سے شب قدر کے برابر ہے. کیوں؟ شب قدر میں قرآن صامت کا نزول ہوا تھا اور آج اس رات میں قرآن ناطق کا نزول ہوا ہے. قرآن ناطق کے آخری پارے کا نزول ہوا ہے اور یہ دونوں جو ہے قرآن ہے. میں نے پہلے بھی مثال دیا کہ قرآن کو اگر انسان کامل و اکمل ہو عتم کی شکل میں ڈال دیں تو وہ ائمہ بن جاتے ہیں. ائمہ کو اگر کسی کامل کتاب کی شکل میں ڈالیں تو قرآن بنتے ہیں. اسی لیے قرآن ناطق کو ثابت کہا گیا ہے. انتہائی اہمیت کی رات ہے. اعمال اسی لیے آئے ہیں. بہت سی دعائیں آئی ہیں جن کا انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد ہم کریں گے. ان سارے اعمال کو بجا لیں گے اور زیادہ فوکس کریں گے. آج ریسائکل کریں گے, کریں خود کو اس رات میں. یہ چانسز ملتے ہیں ہمیں ریسائکل کرنے کے لیے. انسان کو تجدید حیات, تجدید نظر کریں خود پر. تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں. تمہید کے لیے وقت اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, ایک عالمی حکومت کا تصور ہے, ایک یونیورسل, آپ انٹرنیشنل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ یونیورسل ہے کیونکہ ولایت تقویم بھی رکھتے ہیں. تشریح زمین پہ نافذ ہوگی جس کا انتظار ہے. تقویم پر ان کی حکومت پہلے سے موجود ہے. تقویم کے ذرے ذرے پر وہ ان کے قبضے میں ہیں. بے عنوان امام معصوم ہو, مظہر صفات خدا, مظہر صفات خدا ہونے کی حیثیت میں تمام ائمہ معصومین جو ہے کائنات پر اور کائنات کے ذرے ذرے پر کنٹرول رکھتے ہیں. تصرف کہتے ہیں جس کو ہم لوگ. اور امام زمانہ کیونکہ خاتم الاوصیاء ہے اور تمام انبیاء اور خاتم النبیین اور تمام پھر گیارہ جو ہے ائمہ خدا الطیبین الطاہرین بے اضافہ سیدت النساء العالمین کا خلاصہ ہے. وہ ان کا جو ہے آخری جو ہے ان کا کیا آواز نہیں جی, تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا نمائندہ ہیں. تو بطریق اولا بعنوان خاتم الاوصیاء, خاتم الائمہ, خاتم الاولیاء کی عنوان سے ظاہر ہے کہ پوری جو ہے کائنات ان کے اس میں ہے, دسترس میں ہے. اور پھر وہ خدا کی صفات جتنی بھی ہیں اس کے مظہر کامل و اکمل و اتم ہے. مطلب کیا ہے خدا کے صفات کے مظہر ہونے کا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خدا کی صفات کہاں پہ بطور کمپلیٹ اور آئیڈیل انداز, پتہ نہیں یہ لفظ صحیح ہے کہ نہیں ہے, ترجمہ کرو, عربی لفظ ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں, بطور کامل و اکمل و اتم, اتم تمام سے ہے, اکمل و کامل تو سمجھتے ہیں, اکمل کامل جو ہے اسی کمال سے ہے. تو یہ کہاں پہ نظر آئیں گی ہمیں؟ ظاہر ہے ہم سب اشرف مخلوق ہیں. ہمارے اندر وہ اللہ کی صفات پوری طرح ظہور نہیں کرتی ہیں. صفات جو ظہور کرتی ہیں وہ اولیاء اللہ پہ کرتی ہیں. اولیاء اللہ میں بھی وہ اولیاء اللہ جو کہ اولیاء معصومین ہیں جس کی گواہی قرآن نے دی اور وہ من جانب اللہ ہے. لہذا اللہ قادر ہے تو قدرت کی صفات بطور کامل وہاں ظاہر ہوگی. اللہ جو ہے رحیم ہے تو کیا کہتے ہیں رحمانیت کی صفت بطور کامل جو ظاہر ہوگی وہ ائمہ معصومین کے اوپر ہوں گی. اس لحاظ سے لہٰذا کیا ہے کہ آج میں سنتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ باتیں ہونے لگی ہیں یا پتہ نہیں کچھ کرنے لگے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ائمہ علم لدنی نہیں جانتے, ان کا علم بھی لمیٹڈ ہے, فلان ہے. देखिए इल्म लदुन्नी नहीं जानते हैं, अगर आप इनकार कर दे तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा। मुझे किसी ने कहा कि कहा जा रहा है यहाँ बाज़ लोगों पे, किसी ने कह दिया है आलम दीन नहीं है, वैसे ही कोई बात कह दी उन्होंने और कहा को कोई इल्म गैब नहीं आता है, मैं ये बातें नहीं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन क्योंकि मसाइल है तो छोड़ना पड़ता है। दूसरी सूरत में क्या होगा, एजुकेटेड हुए हैं, एजुकेट किया है किसी ने उनको, टीच किया है, किसने टीच किया होगा, उनसे कोई पढ़ा होगा ना जिसने टीच किया, उनसे ज्यादा जानने वाला कौन है हिस्टोरिकली तौर पे कोई प्रूफ कर सके किसी एक इमाम के बारे में, कहीं ऐसी चीज नहीं। तो ऐसी जो है कोई ऐसी चीज नहीं, तो लिहाजा इल्म नबी। आप जानते हैं कि इमाम की जब विलादत हुई सन 255 में और फिर जो है सन 329 में तकरीबन 74 ईयर्स के बाद आपकी गैबत कुबरा का आगाज हुआ और आपकी जो वालिदा हैं वो उनके बारे में मुख्तलिफ रिवायात है लेकिन दो अहले तशी के दरमियान इस वक्त पॉपुलर है, ज्यादा शोहरत रखती हैं, ज्यादा जिसको माना जाता है वो ये है कि आपका आपकी वालिदा ग्रामी का ताल्लुक रोम से था, यहाँ पे इटालिया से जहाँ से मैं आता रहता हूँ और वहाँ पे वहाँ की वो शहजादी थी और सिलसिले नसब जो है हजरत ईसा के हवारी हैं शमऊन या यूशे उनसे जाके मिलता है। वो ख्वाब देखती थी, ये ख्वाब नहीं था, मुकाशिफा कहते हैं, मुकाशिफा और ख्वाब में फ़र्क है, तफसील में जाने के लिए टाइम नहीं है अभी। और उनकी शादी का एहतमाम किया, वो शादी कुदरती तौर पर ऐसे हवादिस का शिकार हुई कि वो शादी हो ना सकी, दो बार कोशिश की गई दोनों बार शादी ना हो सकी और आखिरकार उन ख्वाब में उन्हें ये बशारत दी गई कि आप कोशिश कर लें अपने आप को जब मुसलमानों के दरमियान और मुसलमानों और इनके दरमियान रोमन्स के दरमियान जंग हो तो आपने कोशिश करना है कि अपने आप को जो है मुसलमान सरहद के करीब कर दो किसी किसी बहाने से ताकि तुम जो है कैप्चर हो जाओ, कनीस बनाई जाओ मुसलमानों के हाथों, इस तरह तुम अपने उस मुराद और मकसूद तक पहुंचोगी जो ख्वाब में तुम्हें एक नूरानी हस्ती दिखाई देती है जो तुम्हारे मजाजी खुदा होंगे उस तक तुम रसाई हासिल करती हो। शॉर्ट कर तुम ऐसा ही होता है, वो फिर जो है करते करते जो है इमाम मासूम तक पहुंचती हैं और फिर जो है आपकी शादी होती है। यूं जो है आपकी जो है वालिदा, इसीलिए कहते हैं रिवायात में है कि इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो जाहिरी तौर पर जो आपका चेहरा मुबारक और रंगत वगैरह है वो ज्यादातर जो है यहाँ की जो आबादी है इससे ज्यादा मिलता जुलता होगा है रिवायात में। और ये भी कहते हैं कि एक जो यहाँ की पॉपुलेशन है यूरोप की ये जल्दी इमाम को एक्सेप्ट करेंगे, उसके पीछे एक जो राज बता रहे हैं वो एक तो हजरत ईसा अलैहि सलाम है जो जाहिर है कि मोस्टली ईसाई हैं। देखें ये भी जहन में रखें जब ईसाइयत तो आपको पता है हजरत ईसा को सलीब पे चढ़ाया गया, अल्लाह ताला ने रफाना उठा लिया आसमान पर, ये कहते हैं शहीद कर दिया गया, तो ईसाइयत तो मिडिल ईस्ट के एक छोटे से दायरे में वहां लिमिटेड थी, उसकी तो कोई इतनी बड़ी कोई अप्रोच नहीं थी, किताब जो ओरिजिनल बेसिक किताब थी वो भी तहरीफ का शिकार हो गई थी। फिर ईसाइयत दुनिया में आज सबसे बड़ा मजहब है अददी एतबार से, तो इसकी वजह क्या है बेसिकली, इसकी वजह यह है कि जब सरकारी मिशनरी किसी चीज की तबलीग करती है तो पब्लिक में वो फैलती है, गलत हो या दुरुस्त हो ये बात का मसला है, इसीलिए अइम्मा को विलायत तशरीह दी गई थी, इसीलिए कहते हैं कि भाई हुकूमत इमामों का हक है, हुकूमत इमाम का हक है क्योंकि जमीन खुदा पर खुदा के बंदों पर खुदा का कानून नाफिज करना तो इमाम कर सकता है, इमाम मासूम कर सकता है। और जो है इसलिए आप देखते हैं कैसर रूम ने ईसाइयत को कबूल किया तो ईसाइयत फैल गई, बादशाह सऊदी अरब ने वहाबियत कबूल किया, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की आइडियोलॉजी कबूल की तो पेट्रो फाइनेंस के जरिए पूरी दुनिया में वहाबियत फैला दिया, अब वो वापस रिटर्न करके लिबरलिज्म और सेक्युलरिज्म की तरफ जाना चाहते हैं और दीन की एक लिबरल इंटरप्रिटेशन देना चाहते हैं नई किस्म की जिसको उन्होंने दीन उल वसतिया का नाम दिया, कुरान की एक इस्तिलाह इस्तेमाल की है, वो अभी शुरू कर चुके हैं इसका, इसको काम कर रहे हैं, उसको थिंक टैंक्स बैठ रहे हैं, मदारिस खोलेंगे, इंस्टीट्यूट बनाएंगे जैसे वहाबियत को फैलाने के लिए किया पेट्रो फाइनेंस के जरिए से, तो अब वो एक काम कर रहे हैं। ये रियासत और हुकूमत के हाथ में, हुकूमत के हुक्मरान जब दीनदार हो या उस आइडियोलॉजी का मानने वाला हो तो जाहिर है वो रियासत की मिशनरी को यूज करता है। बनी उमैया ने इतने साल हुकूमत क्यों की, क्योंकि हुकूमत उनके कंट्रोल में रही, पावर उनके पास था, पैसा उनके पास था, इक्तदार उनके पास था, रियासत मिशनरी उनके पास थी, अइमा अलैहिस्सलाम के साथ मुखलिस लोग नहीं थे, अददी एतबार से तादाद में कम लोग, क्योंकि लोग दुनिया चाहते थे, अइमा दुनिया के बारे में कहते थे दुनिया में तुम्हें एक नूरानी जिंदगी मिलेगी लेकिन दुनिया परस्ती चाहते हो तुम, दुनिया के जो है सारी फैसिलिटीज लेना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दुनिया मजरा है आखरत है, ये दुनिया पुल है का ये पुल को क्रॉस करने के लिए बनाया है हमने, तुम्हें यहाँ के यहाँ का तुम यहाँ के बासी हो ही नहीं, असल में तुम्हारा ताल्लुक इधर से ही नहीं, तुम वहां से आए हो, वापस रिटर्न करके जाना, तो ट्रांजिट पीरियड में बैठे हो। इस परसेप्शन के साथ, इस कंसेप्ट के साथ दुनिया में लाइफ गुजारना है। लोग आयमा के आपसे दूर भागते थे, कहते यार ये तो नहीं हो सकता। आप शिमर के बारे में जानते हैं ना, शिमर को कहा रे की हुकूमत या फिर बहेश, कहता है नहीं वो बहेश देखा किसने, जन्नत को देखा किसने, ये तुम सामने नजर आ रही हो, इतनी बड़ी जरखेज जमीन है माशाल्लाह, ये मुझे मिलेगी। देखें ना आप, देखें कैसे लोग कैसी प्रायोरिटीज क्या है लोगों के पास, प्रायोरिटीज ये है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है उस वक्त क्या था, आइमा के साथ हमेशा रहा है। तेजी के साथ चलते हैं, मुझे क्योंकि अलामात ज़हूर के बारे में कहा और आज तो वक्त ही नहीं है, मैं तो अलामात ज़हूर के बारे में एक घंटे की पूरी जबरदस्त खुलासा बना के तैयार था अपनी जो रिसर्च है उसको लेकर, और मैं स्पेसिफिक मेरे ये सब्जेक्ट रहा है मेरा और मैं इसके ऊपर बहुत लिखता रहा हूँ, ऑलमोस्ट अगर वो छप जाए तो 2 से 3 जिल्द किताब बन जाए इंशाल्लाह ताला। अर्ज कर दूं कि फ्यूचर या मुस्तकबिल के बारे में देखो 2-3 कंसेप्ट पाए जाते हैं। एक कंसेप्ट तो ये है जो यहाँ जहां हम ठहरे, यहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं, थिंकर्स हैं, जो सोशियोलॉजी और समाजियात के ऊपर नजर रखते हैं वो करते हैं, या पॉलिटिकल, इनके जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी तरफ से एक एनालिसिस पेश किया जाता है। मसलन हर कोई सोचता है भाई फ्यूचर हमारे पास होना चाहिए, कायनात में ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे पास हो, कंट्रोल हमारा हो, इकोनॉमिकली तौर पर, कल्चरली तौर पर, लैंग्वेज के अतबार से, इवन हर लिहाज से, आइडियोलॉजी के अतबार से, एक तो ये। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कायनात का फ्यूचर नहीं है कोई भी। ब्रेटन रसेल, आपने नाम सुना होगा, उनकी किताब है हैज मैन अ फ्यूचर, गूगल कर ले मिल जाएगा, हैज मैन अ फ्यूचर। फिर वो उस किताब के अंदर कहता है क्यों नहीं है मैन के पास कोई फ्यूचर, क्यों नहीं है, इसलिए कि कहता है देखो आपने ये वेपन बनाया, आपने ये वेपन बनाया, आपने ये वेपन बनाया, ये वेपन बनाया, कह रहा है कि कोई फ्यूचर ही नहीं है इस कायनात का। तो इनकी इतनी कंट्रडक्शन है। वो जो हंटिंगन ने जो कंसेप्ट पेश किया था जो सकाफतों और तहजीबों के दरमियान टकराव की, जो क्लैश की बात की थी उसने मुकाबले में, उस वक्त के ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक कंसेप्ट पेश किया, कहा था कि नहीं डायलॉग की बात करें आप गुफ्तगू की, आज इंटरफेट डायलॉग की बात कर रहे हैं ना, ये तो हमने पहले, इस्लाम ने पहले दिया था ये कंसेप्ट, या अहले किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ए अहले किताब आओ ना हमारे और तुम्हारे दरमियान जो कॉमन चीजें हैं उस पर लेके बैठ जाते हैं आपस में, आओ जो कॉमन चीज पकड़ते हैं उस कॉमन चीज के ऊपर बैठ जाते हैं, डायलॉग करते हैं। हमारे मजहब की तरफ से जो कंसेप्ट दिया गया था, हमें जो दिया गया कि कैसे जिंदगी गुजारें, कहा कि देखे मौलाना ने फरमाया, मालिक अश्तर को जो खत लिखा मैं अक्सर बयान करता हूं, फरमाया देखो 2 किस्म के लोग हो सकते हैं जिनका आपसे वास्ता पड़ सकता है कायनात के अंदर, इस जमीन के अंदर, या तो ये कि दीनी एतबार से आपके करीब है, दीनी एतबार से कितने करीब हो सकते हैं, मैं भी एक अल्लाह के मानने वाले हैं, और फिर क्या हो सकता है, कुछ लोग एक अल्लाह को मानते हो, चलो एक चीज तो कॉमन आ गई है, एक खुदा को मानता है, फिर ये कि आखिरी नबी को मानता है, चलो एक और चीज कॉमन आ गई है, आखिरी नबी की बहुत सारी तालीमात को मानता है, चलो फिर बहुत सारी और कॉमन आ गई, फिर अहले बैत रसूल को मानता है, कुरान उतरत को मानता है, और ज्यादा नजदीक आ गए, कुरान उतरत और तमाम 12 इमाम को मानता है, 6 पे रुकता नहीं है, 3 पे रुकता नहीं है, 5 पे रुकता नहीं है, 12 के 12 इस नाशर को मानता है, चलो ये तो आप एक ही हो गए, चलो कैटेगरीज बन गई ना, कुछ तो चीजें मुश्तरका है। अब फर्ज करते हैं अल्लाह को मानता ही नहीं है, दीन ही नहीं उसके पास, एथिस्ट है वो, बिल्कुल एक वो है लाइक, क्या कहते हैं उसको, टोटली 100% जो है किसी कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट ही नहीं रखता, फिर क्या करें, कह रहे नजीरुल्लाह का फिल खल्क, तुम्हारा जैसा इंसान है, चलो एक और चीज तो है ना, इस ये तो हर एक के पास है, इसमें तो कोई मजहब का मसला नहीं। फरमाया अन्नासु सिन्फानी, ये मालिक अश्तर के खत, कहता है मालिक अन्नासु सिन्फानी अखुन लका फिल दीन औ नदीरुन लका फिल खल्क, मालिक याद रखो देखो लोग 2 किस्म के हैं, या तो तुम्हारा दीनी भाई है कैटेगराइज बन सकती है, या फिर तुम जैसा इंसान है, ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट है ये, ह्यूमैनिज्म इंसान परस्ती जो यहां पर है जिसकी बेस पर सारा आइडियोलॉजी बनी हुई है उसकी बात नहीं कर रहा, इंसानियत की बात हो रही है, इंसान परस्ती की नहीं, खुदा परस्ती की जगह इंसान परस्ती को लेके आ रहे हैं, और ये इमाम का काम है। इमाम ने दुनिया परस्ती और खुदा परस्ती को हटा के, मतलब इंसान, इमाम ने दुनिया इंसान के ऊपर इंसान परस्ती, दुनिया परस्ती को हटा के खुदा परस्ती की तरफ लेके जा रहा है, हताया ने रिश्ता परस्ती खत्म, जबान परस्ती खत्म। देखिए इमाम की यूनिवर्सल हुकूमत की कोई सरहद नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई खास वो नहीं है, कम्युनिटीज डिवाइड नहीं होंगी, बॉर्डरों के अंदर डिवीजन नहीं होगी, बॉर्डर्स की डिवीजन नहीं होगी, लैंग्वेज बैरियर्स नहीं बनेंगे कि मसलन हम में से हर कोई باوجود ایک مذہب کے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کسی لینگویج کی وجہ سے ڈیویژن کر کے الگ کر دیں، اس بیس پر ڈیویژن بنا دیں، یہ غلط کنسپٹ ہے. یا کسی ریجن کی وجہ سے کریں، ایشین، نان ایشین، یورپین، مڈل ایسٹ، یہ کنسرن نہیں ہے وہاں کی حکومت، یونیورسل ہے. یملا الارض، ارض کہا ہے، نہیں کہا یملا الارض یعنی مشرق الوسطی یعنی شرق الاوسط، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ صرف مشرق، ہاں مشرق وسطی ہیڈ کوارٹر ہے امام کی حکومت کا. بس ایک کنسپٹ یہ ہے کہ کائنات کا کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی مستقبل نہیں ہے. اسی کے اندر دوسرا کنسپٹ یہ ہے کہ کائنات کا جو فیوچر ہے وہ ہم اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں، ایک تصور یہ ہے. دوسرا تصور ادیان کا ہے، تمام ادیان جو خاص کر آسمانی ادیان ہیں، حتی غیر آسمانی، ہندوئزم، سکھیزم، بدھیزم، یہ بھی کسی نجات دہندہ کی آمد کے بارے میں بات کرتے ہیں. حتیٰ جو آپ کی جو سوشیولوجی ہے وہ بھی آپ اس معاشرے کے بارے میں بات کرتے تو کہتی ہیں کہ یہ بالکل ہی انایکسپٹیبل ہے کہ اس کا دی اینڈ ایک ایسی چیز پر جا کر ہو جائے کہ جس میں جو ہے جس کے اندر جو جس کا کوئی پوزیٹیو رزلٹ نہ نکلے بلکہ ایک نیگیٹیوٹی ہو ہمیشہ. کچھ علامات بتائی گئی ہیں کہ آنے سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے. ظاہر ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں سے پانچ یا چھ علامات ایسی ہیں جو ڈیٹیل میں بتائی گئی ہیں، جن میں سے ایک کچھ پوزیٹیو ہیں، کچھ نیگیٹیو ہیں. اب میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. مثلا کچھ شخصیات کی آمد ہے امام کے آنے سے پہلے، کچھ موومنٹس کے بارے میں بات کیا، کچھ ایریاز کے میں کچھ ایکٹیویٹیز کے بارے میں کہا، پوزیٹیو نیگیٹیو. مثلا شام کو کہا سفیانی کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، سفیانی وہاں سے نکلے گا. سفیانی کی پہچان کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن اہل بیت ہے، اہل بیت کے نام سے وابستہ کوئی بھی چیز ہے وہ اسے تاراج کرنا چاہے گا، مزارات ہوں یا اہل بیت کے نام پہ امام بارگاہیں ہوں، مساجد ہوں، اہل تشیع کو اسی طرح ٹارگٹ کرے گا. وہ وہاں سے موومنٹ چلا کے لے آئے گا، حتیٰ کہ بغداد ہلہ کے قریب پہنچ جائے گا. وہاں پر یہاں سے جو ہے خراسان ہے، خراسان یعنی ایران ہے، وہاں سے ایک موومنٹ چلے گی. یہ پوزیٹیو موومنٹ ہے، امام کے جو ہے مددگار موومنٹ میں سے ہیں. سید خراسانی وہاں سے نکلیں گے اور یہ خراسانی کا لشکر یہاں پہ بغداد میں پہنچ جائے گا ان کے ڈیفنس کرنے کے لیے. عراق کی ایک مین، عراق کا ایک رول ہے، ایران کا ایک رول ہے، خراسان جس کو یاد کیا گیا ہے. مڈل ایسٹ مین ایریا ہے جو افیکٹ ہونے والا ہے. آپ دیکھتے ہیں ساری اس وقت مسائل مڈل ایسٹ کے اندر ہیں اور ایکزیکٹلی شام اس وقت زیادہ. پھر یمانی موسٹ امپورٹنٹ جو ہمارے پاس ایک موومنٹ ہے جو کہ بہت پیور ہوگی، یہ یمانی کی جو موومنٹ ہے پیور ہوگی. البتہ کچھ شیعہ ہیں جو کنسپٹ پیش کرتے ہیں کہ یمانی جو ہے پاسبلٹی ہے کہ یمانی عراق سے موومنٹ کرے اپنی، لیکن میجورٹی کا یہ خیال ہے کہ نہیں، یمانی یمن سے ہی موومنٹ کرے گا اور ان کا شیعہ اتنا اشریہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے روایات کے حساب سے، اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں جا نہیں سکتے، میرے پاس تھے ادھر ایویڈنس میں لے کے آیا تھا، ضروری نہیں ہے. یمانی کہتے یہ یمانی کی اتنی زیادہ عظمت ہے، خراسانی اسی طرح ہے، یمانی اسی طرح ہے کہ امام جب کعبے میں ظہور کا اعلان کر کے جب نکلیں گے وہاں سے تو یمانی کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں گے. بڑا اعزاز ہے یہ کہ امام جس پلیس کو چھوڑ کے آگے موومنٹ کر رہے ہیں لشکر کو، تو اپنی جگہ پہ یمانی کو بٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ ینگ آدمی ہوگا، بظاہر کوئی پاپولر شخصیت بھی نہیں ہوگی، یہ کہ بہت سمجھدار ہوگا، دیندار ہوگا، دین شناس ہوگا، زمانہ شناس ہوگا، پولیٹیکلی طور پر دشمن کو انڈرسٹینڈ کرے گا، اس کی پالیسیز کو، اس کی اسٹریٹجی کو، اس کو سمجھنے والا انسان ہوگا، دوستوں کے بارے میں سمجھنے والا انسان ہوگا. تو یہ یمانی کا ہے. امام کے ظہور سے پہلے جو ہے قریب میں کچھ آسمان سے آواز آئے گی، ہر شخص اپنی زبان میں سنے گا، یہ جو ہے اپنی علامات میں سے بیان کیے گئے ہیں. ایک محترم شخص کے قتل کے بارے میں کہا، جو نفس زکیہ ہے، ان کے قتل کے حوالے سے کہا کہ بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل ہو چکا ہے، بعض علماء رائے ہے، جیسے خراسانی کے بارے میں اس وقت رائے پائی جاتی ہیں فلاں فلاں شخصیت خراسانی ہو سکتی ہے. یمانی کے اندر جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے یا سیریا کے اندر بنی ہوئی، ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں پاسبلٹیز ہیں کہ جو ایشوز ہیں وہ اسی سے ایک چین کی شکل میں ہوں. البتہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ غلط بھی نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز اور روایات کو جب آپ لا کے ٹیلی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک چین کی طرح کے واقعات ہیں. اگرچہ پولیٹیکل انالائسس جب آپ کرتے ہیں کسی انسیڈنٹ کے بارے میں تو آپ کو پھر تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے بات کرنی پڑتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، یعنی میں بنوان ایک عالم دین کے بات کر رہا ہوں، میں انالائسس نہیں کر رہا، پولیٹیکل انالائسس پہ نہیں ہوں اس وقت، بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ اس وقت وہاں ہو رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر اس کا براہ راست ہماری روایات سے اور امام کے ظہور سے تعلق ہے، اور جو انسیڈنٹس وہاں ہو رہے ہیں وہ یہ کے بعد دیگر سٹیپ بائی سٹیپ ہم एक ग्रेजुअली हम जा रहे हैं उसी तरफ। अब ये कितना लंबा पीरियड है, कहां तक चला जाएगा, हम नहीं कह सकते हैं। बहुत ज्यादा कुंभ के बारे में, कुंभ को इतना अहमियत हासिल है। देखिये नजफ, करबला, मक्का, मदीना तो इंपॉर्टेंट होली सिटीज है हमारे लिए, कुंभ की जो है इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। हजरत कुंभ से एक मर्द, एक सादात के उठने की बात की गई है। और ये रिवायत पुराने जमाने में किसी की समझ में नहीं आती थी, आज जो है समझ में आ रही है। मसलन का रजुल मिन अहलिल कुम यदउ الناس فيجتمعون على الحق का ज़ुबुर अल हदीद, अजीब आयतें हैं, अजीब रिवायत है। कह रहे कुम से जो है बाज में का सैयदी मिन अहलिल कुम, हमारी खानदान में से, निस्बत या इमाम ने अपनी तरफ बराए रास्त का, मेरी खानदान में से एक सैयद कुम में कयाम करेगा या तो लोगों को दावत देगा। लोगों की किस बुनियाद पर दावत देगा? हक के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं, दुनिया में उसके लिए नहीं, हक के लिए। फयस्तमीउन अलल हक, करे वो हक के ऊपर इकट्ठे होंगे। और ये इनका जो इकट्ठे होना है ये आहनी चट्टान की मानंद है, ज़ुबुर अल हदीद, हदीद सूरह हदीद भी आपको पता है, आहनी चट्टान की मानंद होंगे। मतलब क्या है कि इनको डराया नहीं जा सकेगा, इनके साथ आप जितना भी इनको खौफजदा करना चाहें, जितनी भी मुश्किलात में डालेंगे, लेकिन ये आनी चट्टान होंगे। आनी चट्टान की एग्जांपल इसलिए दिया कि मुश्किलात को फेस करेंगे। अलबत्ता आम तौर पर जो सिचुएशन बयान की गई है वो एहतशी के लिए मुश्किलात के हवाले से है, चूहों के ऊपर एक बड़ा कड़ा वक्त आएगा, लेकिन इसी कड़े वक्त के अंदर से एक पौध खड़ी होगी जो कि अभी हमें नजर आ रही है, आस्ता आस्ता वो सर उभारती नजर आ रही है। देखिये मुश्किल में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कुछ दुआएं हैं, उसमें कह रहे हैं परवरदिगारा मुझे वो मुश्किलात अता फरमा, मफ़हूमन उसका तर्जुमा ये है, जिससे मैं निखार के सामने आऊं। यानी देखे मुश्किलात में कितना सोना आग में पक के कुंदन बन जाता है कि नहीं है? बिल्कुल इस तरह है। वो जो सहरा में दरख्त पड़ता है बड़ा मजबूत होता है, जलाओ तो देर तक जलता है। जो घर के सहन में दरख्त को जो हम उगाते हैं ना, उसे जलाओ तो जल्दी वो करेगा, तोड़ने की कोशिश करोगे तो जल्दी, क्योंकि नाज और निअम में पला है, मुश्किलात में नहीं पला। आप देखते हैं अंबिया और अवलिया को, वक्त लज़न कम दकाई के अंदर दकी, आप देखते हैं कि अंबिया और अवलिया को मेन शहर से हटा के दूर किसी सहरा में तरबियत के लिए किसी दाई के हवाले किया जाता था। अंबिया के कामों में क्या होता था? बकरियां चराते थे, चरवाहे होते थे ज्यादातर, ये पेशा होता था उनका अंबिया का ज्यादातर, मुश्किल काम है ना। जब मुश्किलात के अंदर आदमी कह रहे तशय्यो के अंदर आखिर जमाने में मुश्किलात आएंगी, लेकिन उन्हीं मुश्किलात के अंदर से ग्रोह उठेगा। और इस ग्रोह के बारे में अजीब जुमले कहे, कहा कि ये बहुत से अंबिया से ज्यादा फजीलत रखते होंगे। एक बात इस ग्रोह के बारे में कहा, ये लोग ऐसे हैं जैसे कि आज रसूलुल्लाह के साथ बद्र उहद में थे। तीन, कह रहे कि ये उस आखिरी जमाने में जब रात के अंधेरे में दीनदारी ऐसी होगी कि रात के अंधेरे में जैसे कांटों को खाली हाथों से चुनने की मिसाल है, तो ये लोग चुनेंगे। या बाज मिसाल दी, आखिर जमाने में इतनी मुश्किलात होंगी दीन के ऊपर अमल करने के लिए कि गोया जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ के रखना हो। कह रहे ये लोग करेंगे, और हमें ये नजर आता है, और बदरी कोला दुनिया के हर कोने में नजर आता है, हर जगह में ये हमें ग्रोह नजर आता है। एक का दुक्का कहे तो हो सकता है आपके जनवा में भी यहाँ दो चार हों ऐसे लोग, इंशाल्लाह ज्यादा होंगे, हर जगह होंगे ऐसे लोग हैं। इसीलिए कहा कि 313 तो मेन है, 10,000 इसके नीचे है जो दूसरा, ये जो 313 है ये कोर टीम है इमाम की, इस कोर टीम के नीचे भी टीमें हैं जो 10,000 जिनके बारे में कहा, अशरत आला 10,000 लोग हैं जो काम कर रहे होंगे, और फिर उसके नीचे इसी तरह लोग होंगे। जितनी बड़ी यूनिवर्सल हुकूमत संभालनी है तो काम करना, डिटेल में जा नहीं सके मैं, बहुत माजरत चाहूंगा। नाकजिल मिन जमीकुम बबख्शीद खैले, चूं कौल दादे बुदम बरसर कौल मुंदम दिए हिंदुस्तान।